राग माझ महला तीजा। इस गुफा में है अखुट पंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा।
आज के सत्संग के वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश को बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप समझाते हैं कि हम सभी को उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर मन के अधीन जो जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। आम महात्माओं ने इस दुनिया को कर्म भूमि या कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान किया है। इस जगह आकर जो भी कर्मों का बीज बोते हैं, उसी फसल को काटने के लिए वापस यहीं आना पड़ता है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अपने कर्मों के अनुसार हमें जिस जामे में भी जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे में हमें दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हमारी ये हालत रहती है, तो आप ही सोच लें कि किसी और जामे में बैठकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसलिए हर एक महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा अपने असल में जाकर नहीं समाती, तब तक इसका जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक को उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों स्थानों पर जाकर उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई हिमालय पर्वत पर खोज कर रहा है, कोई ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में तलाश कर रहा है। गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह परमात्मा तो हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हजूर दूर ना देखो रचना जिन रचाई। जिस परमात्मा ने इस सारी दुनिया की रचना की है, वह कहीं दूर नहीं है, वह तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर कोई लेबोरेटरी है जिसके अंदर जाकर मालिक से मिलने की खोज करनी है, वह हमारा शरीर है, हमारी देह है। आज तक शरीर के बाहर ना किसी को कुछ मिला है, ना ही कुछ मिल सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई। जो गुरमुख लोग मालिक के भगत और प्यारे होते हैं, वह हमेशा शरीर के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भटकते फिरते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं, वह हमें अपने शरीर और अपनी देह के अंदर से ही मिलना है। इसलिए गुरु साहब हमें इस शब्द में समझाते हैं, इस गुफा में है अखुट पंडारा। ये जो शरीर है, ये केवल गुफा ही नहीं है, परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार वस्तुएं, अनगिनत खजाने और भंडार रखे हुए हैं। और तो और, खुद परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, ज्यों तिल माहे तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, वह परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहां हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए संत महात्मा हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। लेकिन देख लें, हम दुनिया के जीव किस अकल के मालिक हैं? जो स्थान हम अपने हाथों पैरों के द्वारा ईंट पत्थरों से उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, वहां जाकर तो दिन रात हम उस परमात्मा की खोज करते रहते हैं और उस स्थान को भूल जाते हैं जो कि परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर परमात्मा मौजूद है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। फिर हम अपने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, वहां धूप जलाते हैं, वहां जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कितनी सफाई हम उन मंदिरों में रखते हैं, क्योंकि वह स्थान हमने परमात्मा के रहने के लिए बनाए हैं, और वह स्थान जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, उसके अंदर कभी मांस डाल देते हैं, कभी शराब डाल देते हैं, और कभी उसके अंदर बैठकर बुरे खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कदर नहीं करते। कई बार तो हिस्ट्री पढ़ कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए ईंट पत्थरों के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की दीवार के अंदर कभी गलती से भी कोई दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा द्वारा बनाए गए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिस्ट्री पढ़कर देख लें कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों ने किस तरह एक दूसरे का खून बहाया है। अगर एक दूसरे का गला काटने से ही परमात्मा मिल सकता हो, तो सोचो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है। लेकिन ये हमारी भूल है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, वह परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की रचना से भी प्यार करते हैं। वह एक परमात्मा है, उस परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है, वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा है। मैं कहता हूँ कि फिर भी कोई अगर किसी से नफरत करता है, तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अभी तो उसके अंदर मालिक से मिलने का शौक ही पैदा नहीं हुआ, प्यार ही पैदा नहीं हुआ। इसलिए महात्मा हमें बड़ा खोल कर समझाते हैं कि वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है।
आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी ही आप वंजावण्या।
अब फरमाते हैं कि वह परमात्मा कण कण में, पत्ते पत्ते में व्यापक है। वह परमात्मा चोरों, ठगों, साधुओं, संतों, महात्माओं के अंदर भी व्यापक है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं वह परमात्मा गुप्त बैठा हुआ है और कहीं प्रगट है। जहाँ गुप्त बैठा हुआ है, प्रगट किस तरह हो सकता है? आप फरमाते हैं गुर शब्दी आप वंजावण्या, कि वह परमात्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि हमारे और परमात्मा के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुदी सेल्फ और ईगो की रुकावट है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, आप बन जाए तो सब कुछ पाए। अगर हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं, तो सब कुछ ही प्राप्त कर लेते हैं। वह अपना आप क्या है? हौमे है, खुदी है। ये जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं, यह मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, हम जिन्हें सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों की नहीं बनी तो हमारी किस तरह बन सकती हैं? ये सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी बनती नहीं। लेकिन इनको अपना बनाने की कोशिश में इनके साथ मोह या प्यार हो जाता है। यही मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जीवन मुकत सो आखिए जिस विचों हमे जाए। अगर हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाए, तो हम मौत के बाद क्या जीते जी ही मुक्ति हासिल कर लेंगे? हमारा मन इन शक्लों और पदार्थों से इतना लगाव या प्यार पैदा कर लेता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आने लगते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें ही हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहां आसा तहां वासा, जहां हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तक तुम इस होमे की रुकावट को, दुनिया के मोह या प्यार को दूर नहीं करोगे, वह परमात्मा हर एक के अंदर होता हुआ भी गुप्त ही रहेगा, प्रकट नहीं हो सकेगा। प्रकट किस प्रकार कर सकेंगे? गुरशब्दी, कि जिस समय गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द के साथ ख्याल जोड़ेंगे, नाम के साथ ख्याल जोड़ेंगे। गुर शब्द का अर्थ है गुरुमुखों के द्वारा उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल करना। इसलिए हम शब्द या नाम की कमाई करके ही इस अहम की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्दे होमे किन मारी। इस दुनिया के अंदर चाहे जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य करके देख लो, शब्द की कमाई के बिना इस होमे की बीमारी से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। महात्मा जिस शब्द या नाम का जिक्र करते हैं, ये शब्द या नाम कोई लफज नहीं है। जितने भी हमारे लफज हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। ये अपने लिखने, पढ़ने, बोलने में आ जाते हैं। हमारे कितने ही देश हैं, एक एक देश की कई कई जबानें हैं, और एक एक जबान के अंदर हम कितने ही लफ्जों से उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के जितने भी नाम प्यार में आकर रख लेते हैं, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। हम हर एक शब्द की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, वक़्त मुकरर कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल, कोई 1000 साल पुराना है। हजारों अनेकों नामों और लफ्ज़ों के द्वारा महात्मा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्माओं को आगे भी इस दुनिया में आना है और हजारों नामों के द्वारा उस परमात्मा को याद करना है। लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, धुनात्मक नाम की महिमा करता है, जिसे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जबान से बोला जा सकता है, और ना ही इन कानों से सुना जा सकता है, जिसको हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। उसी नाम की गुरु अंगद देव जी महिमा करते हैं। अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इयों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमे मिलना। उस शब्द, हुक्म या नाम को पकड़कर हम अपने खसम पति यानी परमात्मा से मिलेंगे, जिसको ना कभी हमारी आंखें देखती हैं, ना हमारी जबान बयान करती है, ना कभी हमारे कान सुनते हैं, जहां ना हमारे हाथ लेकर पहुंच सकते हैं, ना हमारे पैर लेकर पहुंच सकते हैं, और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है कि जिस चीज़ को नौ द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं। गुरु साहब बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह खंडरों के नीचे बने बनाए कुएं दबे पड़े रहते हैं, हम उन ज़मीनों पर चलते फिरते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि बना बनाया कुआं इस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड वह सज्जन होते हैं जिन्हें हम वाटर डिवाइनर कहते हैं। वह अपने इल्म और हुनर के द्वारा हमें समझाते हैं कि इस जगह पर ज़मीन की खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। ओड लोग कुआं बनाकर धरती के अंदर दबाकर हमें खबर देने नहीं आते। उनके पास इल्म और हुनर होता है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम ज़मीन की खुदाई करके कुएं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसी तरह गुरुमुखों को अपने पास से हमें कुछ नहीं देना है। वह दौलत मालिक ने हमारे अंदर हमारे लिए रखी हुई है। उन्होंने केवल इशारा करना है, तरीका बताना है, युक्ति बतानी है कि किस तरीके से हम आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि गुरशब्दी, हम गुरुमुखों के द्वारा ही उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल कर सकते हैं। जब हमारा मन उस शब्द या नाम की लज्जत में लग जाता है, तो ये होमे की बीमारी, दुनिया का मोह या प्यार हमारे अंदर से निकल जाता है। फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता चलता है, अपने असल का पता चलता है कि वह परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन गुप्त है। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द की कमाई करके होमे की रुकावट को दूर कर लेते हैं, तो वह हमारे अंदर प्रकट हो जाता है।
हो वारी जियो वारी, अमृ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ।
ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਬਲਹਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹਮਾਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜ ਦੀਆ। ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੋਂ, ਕਬਾਬੋਂ, ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ ਮੇਂ ਫੰਸਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਅਬ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਨਾਮ ਆਕਰ ਬਸ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਬਸਾ ਹੁਆ ਥਾ? ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਸੇ ਹੁਏ ਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀ, ਉਨਕੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਜ਼ਤ ਪਾਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ, ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਮੇਂ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਤਾਸ਼ੇ ਘੋਲਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ, ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸ ਰਹਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋ ਚੋਰੋਂ, ਠੱਗੋਂ, ਸਾਧੂਓਂ, ਸੰਤੋਂ, ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕਿਸੀ ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮੁਲਕ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 9 ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚੁਈ ਜੈ। ਭਾਈ, ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੋਂ, ਕਬਾਬੋਂ ਕੀ ਲਸਤੇ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਸ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵਹਿ 10ਵੇਂ ਚੁਈ ਜੈ, ਵਹਿ ਤੋ ਤੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਬਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਬਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਹਮ ਅਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਪੀਨਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਤੋ ਕਭੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੇਂ ਫਸ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਕੌਮੋਂ, ਮਜ਼ਹਬੋਂ, ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਕਬਾਬੋਂ ਕੀ ਲਜ਼ਤੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਭਾਗਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਲਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਫਸ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਉਸ ਮਨ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਂਗੇ? ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਤੀ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਹਮ ਬਰਤਨ ਕੋ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਬਰਤਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਏਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ। ਅਗਰ ਉਸੀ ਬਰਤਨ ਕੋ ਸੀਧਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਹਿ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਯਾਨੀ ਵਹਿ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਲਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮੀਠੀ ਹੈ। ਮੀਠੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਸੈਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਮੇ ਅਭੀ ਮੀਠੇ ਲਗਤੇ ਹੈ, ਯਹ ਫਿਰ ਹਮੇ ਫੀਕੇ ਲਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵਹਿ ਫਿਰ ਕੌੜੀਓਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਓਂ ਸੇ ਤਬ ਤੱਕ ਖੇਲਤੀ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੋਂ, ਕਬਾਬੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਓਨਲੀ ਐਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ, ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਯੇ ਜੋ ਹਠ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਮ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮ ਇਨਕੇ ਦੋਸ਼ੋਂ ਸੇ ਬਚ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਕੋ ਵਸ਼ ਮੇਂ ਕਰਨਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਸਾਂਪ ਕੋ ਪਕੜ ਕਰ ਪਿਟਾਰੀ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਟਾਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੇ ਨਾ ਤੋ ਸਾਂਪ ਕਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਸ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਵਹਿ ਪਿਟਾਰੀ ਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਉਸਕੇ ਡੰਕ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਂਪ ਕੋ ਪਿਟਾਰੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਹਿ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਭੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤਾ। सांप को पिटारी के अंदर बंद करके हम निर्भय नहीं हो सकते, हमें अपनी जान का खतरा फिर भी लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर हम उसकी जहर की थैली ही निकाल देते हैं तो वह सांप हार्मलेस हो जाता है, फिर चाहे हम उसे सारा दिन अपने गले में डाल रखें। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर हम अपने मन को वश में करने की इसी तरह कोशिश करते हैं जिस तरह ज़बरदस्ती एक सांप को टोकरी में बंद किया जाता है। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं जाग उठती हैं और हमारा मन उसी तरह हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। आप प्यार से समझाते हैं कि जब हमें शब्द या नाम की लज्जत आ जाती है जो दुनिया की सब लज्जतों से ऊंची और पवित्र है, तो उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह या प्यार छोड़ देता है। आप देखें, अगर एक लड़की को हम शादी से पहले समझाएं कि तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, सखियां सहेलियों का प्यार छोड़ दे, रिश्तेदारों का प्यार छोड़ दे, वह बेचारी सारी उम्र लगी रहे कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस समय उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है, तो वह माता पिता को भी भूल जाती है, भाई बहनों को भी भूल जाती है, सखी सहेलियों को भी भूल जाती है, बल्कि उनसे मिलने तक की भी उसे फुर्सत नहीं मिलती। एक व्यक्ति के प्यार ने उसको सारी दुनिया से निर्लेप कर दिया। महात्मा समझाते हैं कि हमारे मन की भी यही आदत है, ये लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया का मोह या प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। वह ऊंची और पवित्र लज्जत शब्द या नाम की लज्जत है। इसलिए आप फरमाते हैं, अमृत नाम महारस मीठा। भाई, वह जो अमृत से भरा हुआ नाम है, उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। इतनी मीठी है कि उस लज्जत को पाकर ख्याल अपने आप इन विषय विकारों से निकल जाता है। लेकिन उस अमृत भरी लज्जत को हासिल किस तरह कर सकेंगे? गुरमति अमृत पियावणिया। जिस समय तुम मन की मत को छोड़ दोगे, गुरमुखों की मत के अनुसार चलना शुरू कर दोगे। मन की मत क्या है? मन हमें बारमुखी कर देता है, कर्म कांड में उलझा देता है। मन कहता है कि सरोवरों में स्नान कर लो, मुक्ति हो जाएगी, समाधियां बना लो, मुक्ति हो जाएगी, खड़ाओं पर माथा टेक लो, मुक्ति हो जाएगी, महात्मा की चारपाइयों को मत्था टेक लो, मुक्ति हो जाएगी, महात्माओं के मकानों पर सिर रगड़ो, मुक्ति हो जाएगी। हम हमेशा बारमुखी होने की कोशिश करते हैं। जो महात्मा की असली तालीम है कि अपनी सुरत यानी आत्मा को नौ द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो, हमारा मन हमें उस रास्ते पर कभी चलने ही नहीं देता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मन मुक्ताए न पाई। हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का थोड़ा बहुत झुकाव अपने असल की तरफ जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम सभी उस परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, लेकिन मन मुक्ताए न पाई। हम मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। मन क्या करता है? हमें ऐसे रास्ते पर चलाता है जिस रास्ते पर चलकर हम कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। अगर तुम शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल और पवित्र कर लोगे तो यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। बिना इस भक्ति के हम अपने ठिकाने पर किस तरह पहुंच सकते हैं? इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की मत पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हौं मैं मारे बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया।
गुरु साहब ने ऊपर की चार पांच पंक्तियों में संत मत के सार का अच्छी तरह बयान कर दिया है। अब एक एक बात को अलग अलग खोल कर समझाते हैं। आप फरमाते हैं, हौमे मार बजर कपाट खुलाया, यानी जब तक हम अपने अंदर से हौमे की बीमारी को दूर नहीं करते, बजर कपाट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर हैं, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी हमारी आत्मा सुहागन हुई। गुरु अर्जन देव जी इसका कारण बयान करते हैं, अंतर अलख न जाई लख्या विच पर्दा हो में पाई। परमात्मा जरूर हर एक के अंदर है, नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे और मालिक के दरमियान होमे की बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। ये हमारे रास्ते में बजर कपाट बनी हुई है, इसकी ज़बरदस्त और मजबूत दीवारें हमारी राह में खड़ी हैं। लेकिन इस बजर कपाट को हम राह से किस तरह दूर कर सकते हैं? गुरु साहब फरमाते हैं, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। कहते हैं जब हम उस अमूल्य नाम को पा लेंगे, वह रुकावट तो तभी दूर होगी। उस अमूल्य नाम को हम किन से प्राप्त कर सकते हैं? गुरमुखों से, साधुओं संतों महात्माओं की संगत से प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम को आप अमूल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया की कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। अक्सर संतों महात्माओं ने उसे रतन जवाहर माणिक कहकर बयान किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे लिए जो कीमती से कीमती चीज़ है, वह रतन जवाहर और माणिक ही माने जाते हैं। इसलिए दुनिया की चीज़ों की मिसाल देकर समझाते हैं, लेकिन साथ ही उसको अमूल्य और अमोलक भी कह देते हैं कि दुनिया की कोई दौलत कोई खजाना उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन हम उसे कैसे पा सकते हैं? गुरप्रसादी, कि जब हम गुरमुखों के दिए हुए उपदेश पर चलते हैं। गुरमुखों का क्या उपदेश है? कि जो कुछ मिलना है इस शरीर देह या वजूद के अंदर से ही मिलना है, बाहर ना आज तक कभी किसी को कुछ मिला है, न मिल ही सकेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, करे अंदर सब वत है, बाहर किछ नाहीं। हे भाई, जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरी देह या वजूद के अंदर है।
बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। हम दुनिया के जीव तो यूं ही भ्रम और धोखे में फंसकर दिन रात दुनिया के अंदर ही भूले फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। भाइयो, इस नाम की कमाई के बिना कोई भक्ति ही नहीं है, लोग यूं ही भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। जब तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल तुम सोच रहे हो, वह सब शब्द या नाम की कमाई के अंदर आ जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव। जब हम दिन रात परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, विचार करें इससे बड़ा जप हम कौन सा कर सकते हैं? जब हम मालिक की रजा में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है? जिस समय गुरमुखों के स्वरूप को प्रेम सहित दिन रात अपने साथ रखते हैं, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? इसी तरह जब उस शब्द नाम और अनहद वाणी को अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है? जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा बैराग कौन सा हो सकता है? ना बेटे बेटियाँ छोड़ने की ज़रूरत है, ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, और ना कौम मज़हब मुल्क बदलने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, और दुनिया के अंदर रहते हुए भी दुनिया की मैल से गंदा नहीं होना है। अपने शरीर के अंदर ही उस शब्द और नाम की खोज करनी है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछता ही। अगर हम नाम की कमाई छोड़कर किसी दूसरे तरीके या रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि अपने कीमती समय को यूं ही फजूल की बातों में फंसकर बेकार गंवा दिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नामे दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना मालिक के घर पहुँचने की इजाज़त कभी नहीं मिलती, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। इसलिए महात्मा बार बार हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है उस शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कृत्ता बीज बीजय नहीं जम्मे सब लाहा मूल गवाएंदा। अगर सारी उम्र जमीन में बेमौसमा बीज डालते जाओगे वह फसल कभी किसी के घर नहीं आ सकती। किसान लोग जानते हैं कि जब भी गेहूं बोना हो कार्तिक के महीने में बोते हैं। अगर कोई मई जून की गर्मी में गेहूं बोना शुरू कर दे, बेचारा दिन रात कितनी ही मेहनत करे, गुड़ाई करे, खाद डाले, पानी से सींचे, उसके घर गेहूं की फसल तो कभी नहीं आ सकती। मौसम का बीज ही फसल घर लाता है। इसलिए गुरु अर्जन साहब समझाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। भाई अगर कलयुग में आकर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो परमात्मा के कीर्तन के जरिए मिल सकता है। कौन से कीर्तन के जरिए? जिस कीर्तन को गुरमुख ध्यान के साथ अपने अंदर सुनते हैं। आपका इशारा उस शब्द या नाम की तरफ है। जब गुरमुखों के जरिए ध्यान से हम शब्द या नाम को अपने अंदर पकड़ते हैं तब हमारा कलयुग के अंदर देह में आने का फायदा होता है। फिर हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अर्जन साहब ने तो होका देकर बयान किया है, अब कलु आयो रे एक नाम बो 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 वो। कलयुग के अंदर आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। गुरु नानक साहब तुक तुक के अंदर शब्द की महिमा करते हैं, नाम की महिमा करते हैं कि भाई जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। लेकिन उस शब्द या नाम को किस तरह हासिल करना है? गुर कृपा मन वसावणिया। जिस वक़्त तेरे ऊपर गुरमुखों की कृपा हो जाएगी वह शब्द या नाम तेरे मन के अंदर आकर बस जाएगा।
गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया।
अब फरमाते हैं कि ये किस तरह पता चलता है कि हम पर गुरुमुखों की कृपा हो रही है, हम उनके बताए हुए उपदेश से फायदा उठा रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, कि जिस समय गुरुमुखों के ज्ञान के अनुसार हम अपनी आँखों के अंदर सच शब्द या नाम का सुरमा लगाना शुरू कर देंगे, हमारी आँखों के आगे जो अज्ञानता का अंधेरा है वह दूर होना शुरू हो जाता है और हमें उस परमात्मा का नूर और प्रकाश अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम आँखें बंद करते हैं हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ये किस चीज़ का अंधेरा है? ये अज्ञानता का अंधेरा है। लेकिन जिस समय गुरुमुखों के कहने के मुताबिक हम सिमरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, फिर हम अपने अंदर उस प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं, उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके जरिए हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक महात्मा ने उस प्रकाश का, उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहब फरमाते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की ज्योति हमारे अंदर जलती है वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलती है। बाहर हम जितनी भी ज्योतियां जलाते हैं उनके अंदर बत्ती और तेल डालते हैं। कभी बत्ती जल जाती है तो ज्योति बुझ जाती है, कभी तेल खत्म हो जाता है ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति का संत महात्मा जिक्र करते हैं उसे कभी बत्ती और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें परमात्मा की डाली हुई बत्ती कभी ख़त्म नहीं होती और ना कभी परमात्मा का बख्शा हुआ तेल ख़त्म होता है। इसी तरह पलटू साहब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, छः रुत बारह मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं, क्योंकि कुएं का तल नीचे की तरफ होता है, हमारे सिर का ऊपर की तरफ है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिस समय तुम नौ द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले जाते हो, तुम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाते हो, तो जहां हमें हमेशा चिराग और ज्योति जलती हुई नजर आती है, वह कितनी देर तक जलती है? साल की 6 ऋतुएं, 12 महीने, 24 घंटे, दिन रात, हर एक के अंदर वह ज्योति जलती रहती है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जिस समय तुम यहाँ दोनों आँखों के पीछे और बीच ख्याल ले आते हो, फिर तुम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हो। जब तक दोनों आँखों से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तब तक द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दोनों आँखें बंद करके ख्याल को आँखों के पीछे समेट लेते हैं, फिर हम एकता के अंदर आ जाते हैं। दृष्टि ज्योत में धरना, वहाँ तुम्हें एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के दर्शन तुम्हें अपने अंदर ही करने हैं। हजरत ईसा ने भी इस ज्योति के बारे में कहा है, इफ़ दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शेल बी फुल ऑफ लाइट। हमें दोनों आँखों को बंद करके तीसरी आँख या थर्ड आई यानी शिव नेत्र को खोलना है, फिर हमें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु साहब उपदेश करते हैं, राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरमत काढ लईजे। जिस वक़्त हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलते हैं, अपने अंदर उस राम नाम की ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। वह राम नाम की ज्योति चोरों, ठगों, साधुओं, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। इस जगह गुरु साहब उस ज्योति और प्रकाश का जिक्र करते हैं। आप सुरमे की मिसाल इसलिए देते हैं कि हम समझते हैं, अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो कहते हैं कि सुरमा डालना शुरू कर दो, तुम्हारी नज़र ठीक हो जाएगी। लोगों का विश्वास है कि सुरमे से नज़र ठीक हो जाती है। आप समझाते हैं कि आँखें होते हुए भी हम दुनिया के जीव इस अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जिस समय इन आँखों के अंदर शब्द का सुरमा डाल देंगे, फिर हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर नूर और प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम मालिक के दर्शन करने लगेंगे। आप फरमाते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गुवाया। ये अज्ञानता का अंधेरा हमारे अंदर से दूर हो जाएगा और परमात्मा का प्रकाश और नूर हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा।
ज्योति ज्योत मिली मन माने हर दर शोभा पावनिया।
हमें उस प्रकाश और नूर को देखने से क्या फायदा होता है? आप समझाते हैं, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, कि ये जो हमारा मन है ये मान जाता है। ये क्या मान जाता है? अभी हमारा मन कर्मकांड में फंसा हुआ है, विषय विकारों, शराबों, कबाबों के पीछे दौड़ता है। ये बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। जिस समय अंदर उस प्रकाश को देखता है, उस शब्द या नाम की आवाज़ को अंदर सुनता है, ये मान जाता है, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर आना शुरू हो जाता है। जिस समय ये पूरी तरह मान जाता है, तो अपने आप ही ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर हमारी आत्मा अपने आप इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। फिर हमारी ज्योति जाकर उस ज्योत के अंदर समा जाती है। जब तक हमारा मन नहीं मानता, ज्योति कभी ज्योत के अंदर नहीं समा सकती। हम समझते हैं कि किसी के मर जाने पर दान पुण्य कर देने से ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, पितरों को पानी दे दो ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, या दरबार साहब का भोग डलवा दो, श्राद्ध करवा दो, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। दूसरे लोगों द्वारा कुछ करने से हमारी ज्योति ज्योत में नहीं मिल सकती। अपनी ज्योति तो आप ही ज्योत में मिलानी पड़ती है। लोगों के पीछे चलने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी फ़ायदा हमें उठाना है, जीते जी उठाना है। जितना अरसा हमारा मन नहीं मानता, शब्द या नाम की लज्जत हासिल नहीं करता, तब तक हमारी ज्योति उस ज्योत के अंदर किस तरह मिल सकती है? जिस समय मन मान जाएगा, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। फिर हर दर शोभा पावणिया, हरि की दरगाह में जाकर हमें सदा के लिए शोभा और इज्जत मिल जाएगी।
शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत विगार दुख पाए।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस शब्द का, नाम का, ज्योति का जिक्र मैंने अभी अभी किया है, कहीं उस शब्द को सुनने के लिए, उस ज्योति को ढूंढने के लिए बाहर दौड़ना ना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सभी के अंदर ज्योतियां जलाई जाती हैं, कहीं उन्हें जाकर माथा ना टेकना शुरू कर देना। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस शब्द और ज्योति का मैंने जिक्र किया है, वह शब्द और ज्योति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर, देह या वजूद के अंदर है। अगर हम उस शब्द या नाम को शरीर के बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हम अपने कीमती समय को दिन रात बेगारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, थक कर चूर हो जाता है, अपना खून पसीना भी एक कर देता है, लेकिन बदले में उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हमें जो कुछ भी मिलना है, शरीर के अंदर ही मिलना है। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महात्मा उस शब्द की महिमा कर देते हैं, उस ज्योति और प्रकाश के दर्शन करने का तरीका और साधन बता देते हैं। लेकिन ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों को पढ़ने से तो कभी किसी को वह प्रकाश नज़र नहीं आता, ना कभी उस शब्द की आवाज़ सुनाई देती है। महात्माओं ने उस चीज़ की, ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महिमा लिखी है, उसको प्राप्त करने का तरीका और साधन लिखा है। जिस समय इन्हें पढ़कर साधन और तरीके के मुताबिक देह के अंदर खोज करनी शुरू कर देते हैं, फिर हम अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं और घंटे और शंख की आवाज़ को भी अंदर सुन लेते हैं। इसलिए महात्मा हमें बार बार बाहर के भ्रमों से निकालते हैं कि जो कुछ मिलना है, वह शरीर के अंदर ही मिलना है। वह हमें इसलिए बार बार सावधान करते हैं कि कहीं हम बाहर मुखी होकर कर्म कांड में ना फंस जाएं, उस शब्द को, उस प्रकाश को बाहर ही ना ढूंढने में लग जाएं।
मनमुख अंधे सूझे नाही, फिर किर आए गुरमुख वथ पावनिया।
आप फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, अंधे हैं, गुवार हैं, हमें अपने अंदर कुछ समझ ही नहीं आती। एक तो आंखें नहीं हैं, रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है, उस अंधेरे के अंदर हम दिन रात भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस समय बाहर की ठोकरें खाकर पूरी तरह बेबस होकर हम फिर गुरमुखों, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत करते हैं, वह हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने का रास्ता बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। हम उनके समझाने के अनुसार बाहर के कर्म कांड को छोड़कर अपने शरीर या देह के अंदर खोज करनी शुरू कर देते हैं, तो हमें वह रास्ता भी मिल जाता है, प्रकाश भी मिल जाता है, और हम अपनी मंजिल मकसूद पर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए फरमाते हैं कि गुरुमुखों की, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत और सोबत करनी है।
गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन विखे हो मैं मैल जाए।
फिर समझाते हैं, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, केवल गुरमुखों के उपदेश पर चलकर ही हम सच्चे परमात्मा को पा सकते हैं। उस मालिक को आप सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी दुनिया जो हमें नज़र आती है, ये झूठी है, ये नाश और फना हो जाएगी। वह परमात्मा कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल जो तिसे ते आएंदा। वह परमात्मा नेचल है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वह भी नेचल हो जाते हैं, उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। आप फरमाते हैं कि इस झूठी दुनिया में सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी है, सच्चे परमात्मा के साथ प्यार करना है, जिससे हम भी सच्चे और पवित्र हो जाएं। दुनिया की कोई भी मैल उस परमात्मा को छू नहीं सकती। जब हमारा उस परमात्मा से मिलाप होगा, हमारी भी ये दुनियावी मैलें अपने आप ही उतर जाएंगी। कहते हैं, गुरुप्रसादी सच्चा हर पाए, कि जब भी हम सच्चे परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार अपने अंदर लाएंगे, गुरुमुखों के जरिए, साधुओं, संतों, महात्माओं के जरिए ही लाएंगे। किस तरह लाएंगे? आप फरमाते हैं, मन तन वेखै होमे मैल जाए, यानी जिस समय तन में से मन को निकालकर होमे की रुकावट को दूर करेंगे, फिर कहीं जाकर सच्चे परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार हमारे अंदर आएगा। जब तक शरीर के अंदर होमे का जोर है, तब तक हमारा दुनिया के साथ मोह और प्यार है। जब तन में से मन को निकालकर होमे की बीमारी को दूर करेंगे, तभी सच्चे परमात्मा की भक्ति और प्यार हमारे अंदर पैदा होगा।
बैस सुथान साध हरे गुण गावे, सच्चे शब्द समावनिया।
जिस समय तन में से मन को निकालकर होमे की बीमारी को दूर कर लेते हैं, गुरु साहब फरमाते हैं, वहां बैठकर हमेशा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हजूर महाराज जी इसको अंतरी सत्संग कहकर बयान किया करते थे। हरि के गुण गाने का क्या मतलब है? कि हम शब्द को पकड़ना शुरू कर देते हैं, शब्द के अंदर जज़्ब होना शुरू कर देते हैं, शब्द को अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राति, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। कि भाई, गोविंद गोविंद कहने से तुम्हें गोविंद कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम गोविंद के गुण गाना चाहते हो, तो अपने अंदर शब्द को सुनो, अपने अंदर नाम को पकड़ो। जब तक हम अपने अंदर नाम या शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हम काल के गुण गा रहे हैं, इस परमात्मा के गुण कभी नहीं गा सकते। इसलिए फरमाते हैं कि जब हम अंदर उस परमात्मा के गुण गाने शुरू कर देंगे या शब्द को सुनना शुरू कर देंगे, फिर सच्चे शब्द समावणिया, शब्द के अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि हम वापस जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसी शब्द या नाम के अंदर समा जाते हैं। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है।
नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरे मती शब्द सुनावनिया।
अब कुदरती तौर से मन में ख्याल पैदा होता है कि तन में से मन को किस तरह अलग करके होमे की बीमारी को दूर करना है। गुरु साहब की वाणी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर एक तुक से हमारे मन में कोई संकल्प और ख्याल उठता है, तो अगली तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। अब आप समझाते हैं कि तन में से मन को किस तरह निकालना है और होमे की बीमारी किस तरह दूर करनी है। नौ दर ठाक के तावत रहाए, कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ हाड़ चाम मांस का ही बना हुआ नहीं है, वह परमात्मा खुद इसके अंदर बैठा हुआ है। हमें उस परमात्मा की खोज इस तन के अंदर किस तरह से शुरू करनी है? पैरों के तलवों से शुरू करनी है। आप समझाते हैं कि हमारे सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों के नीचे नीचे है, दूसरी आँखों से ऊपर है। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हम सब की आँखों के पीछे है। यहाँ से हमारा ख्याल उतर कर नौ दरवाज़ों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। इस फैले हुए ख्याल को फिर से इन आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। इसको आप असली घर का दरवाज़ा कहकर समझाते हैं। जब हम घर के दरवाजे की खोज कर लेंगे, तभी उस घर के अंदर दाखिल हो सकेंगे। अगर हमें दरवाज़ा ही नहीं मिलता, तो घर के अंदर दाखिल कभी नहीं हो सकते। इसी तरह वह सचखंड हमारा घर है। परमात्मा ने उसका दरवाज़ा आँखों के पीछे लगाया हुआ है, इसलिए इस घर में पहुँचने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने घर के दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि पहले सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को 9 दरवाज़ों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर तुम अपने घर के दरवाजे तक पहुँच जाओगे। मन को इन आँखों के पीछे लाकर क्या करना है? उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राती, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अनहद शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। अगर तुम इस मन से होमे की बीमारी को दूर करना चाहते हो, इस मन को अपने घर के दरवाजे पर लाकर उस शब्द के साथ जोड़ दो, उस नाम के साथ जोड़ दो। अनहद शब्द वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है जो मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह हम सब के अंदर यहाँ आँखों के पीछे आ रही है। वह चोरों, ठगों, साधुओं और संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, मुल्क या मजहब का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी भाग्यवान खुशकिस्मत अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह जो शब्द है वजह दिन राती, ये ना समझो कि वह शब्द कहीं घंटा डेढ़ घंटा हमारे अंदर बजता है या सवेरे अमृत समय ही हमारे अंदर दुनकारें देता है, गूंजता है और दिन के बाकी समय तथा रात को बंद हो जाता है। 24 घंटे वह शब्द हमारे अंदर दुनकारें देता है। इन 24 घंटों के अंदर जो भी वक़्त तुम्हें मिलता है, उसी वक़्त अपनी आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को सुन सकते हो, नाम को सुन सकते हो। कोई ऐसा वक़्त नहीं जो मालिक की भक्ति के लिए नहीं है। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही वक़्त शुभ है जिस वक़्त हमारा मन उस परमात्मा की भक्ति, शब्द या नाम की कमाई की तरफ जाता है। जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उससे अच्छा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है। लेकिन सुबह के वक़्त में महात्माओं ने हमें बड़ी ऐसी खूबियाँ बताई हैं जो किसी और वक़्त में नहीं मिलती। सुबह के समय हमारा शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है, पिछले दिन की थकावट उतर चुकी होती है, पिछले दिन के झगड़े और ख्याल भी भूले हुए होते हैं। हमारा ख्याल दुनिया के अंदर फैला हुआ नहीं होता और घर में बाल बच्चे भी सोए होते हैं। गली मोहल्लों में बसों, रेडियो, तांगों, रिक्शों आदि का शोर भी नहीं होता। फिर जब हम दिन की शुरुआत करने लगे हैं तो क्यों ना परमात्मा का नाम लेकर की जाए, ताकि उसका सुरूर और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे। अगर हम दोपहर में भजन के लिए बैठते हैं, घर के कामकाज भी करने हैं, लड़के लड़कियों की देखभाल भी करनी है, दुकान के ग्राहकों के साथ भी सिर खपाना है, जमींदारों को भी कामकाज करना है, स्त्रियों को चौके चूल्हे का भी कामकाज करना है, उस वक़्त हम अपनी मर्जी के अनुसार समय लगा भी नहीं सकते। अगर हम शाम को भजन पर बैठते हैं, सारा दिन काम करके शरीर थक कर चूर हो जाता है, जल्दी नींद आ जाएगी, सारे दिन के झगड़े आँखों के सामने फिरने शुरू हो जाएंगे। जो काम सुबह घंटे डेढ़ घंटे में बनता है, शाम को उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए। इतना वक़्त और समय किसके पास है? लेकिन अगर किसी को सुबह वक़्त नहीं मिलता, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका सारा दिन बेकार ही चला जाए। चाहे वह दोपहर को बैठे, शाम को बैठे, घंटा दो घंटा, घड़ी दो घड़ी, जो भी समय उस परमात्मा की भक्ति के लिए निकालते हैं, वह हमारे हिसाब में लिखा जाता है। उसका फ़ायदा हमें ज़रूर प्राप्त होता है। गुरु साहब समझाते हैं, उत्थे अनहद शब्द वजह दिन राती, के भाई जो अनहद शब्द है वह दिन रात तेरे अंदर बज रहा है। जिस वक़्त मर्जी हो, उसी वक़्त इन आँखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को अपने अंदर सुनना शुरू कर दे। गुरमति शब्द सुनावणिया, लेकिन गुरमुखों के उपदेश के बिना हम उस शब्द को नहीं पकड़ सकते। गुरमुखों का क्या उपदेश है? यही कि सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करो।
बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वस्त लहै ना चूकै फेरा।
अब गुरु साहब सारे ही शब्द का, संतों महात्माओं की सारी तालीम का निचोड़ एक ही पंक्ति में बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा। भाई, उस शब्द या नाम की कमाई के बिना तू दिन रात जितनी भी कोशिश कर ले, ना कभी तेरी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना तेरा देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से, इस 84 लाख योनियों से कभी छुटकारा हो सकेगा, और ना कभी तुझे परमात्मा मिल सकेगा। जो कुछ तुझे मिलना है केवल शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार। जो शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं वह हमेशा के लिए मर जाते हैं, उन्हें बार बार मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ता।
सतगुरे हाथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुरे पूरे भाग मिलावणिया।
असल में महात्मा वाणी में दो चीजों की महिमा करते हैं, सतगुरु भक्ति और नाम भक्ति। अब सतगुरु भक्ति की महिमा करते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चले बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रख कर उसका भेद या चाबी गुरुमुखों के हाथ में दे दी है। जब तक वे चाबी नहीं देते, भेद नहीं बताते, चाहे नाम के कितने ही खजाने उस परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर रखे हुए हैं, हम अपने अंदर उस दौलत को कभी हासिल नहीं कर सकते।
गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुरे प्रसादी मिल सो जी पाई।
शुरू में गुरु साहब ने फरमाया था, आपे गुपत प्रगट है आपे, कि वह परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में व्यापक है, किसी जगह वह गुप्त है, किसी जगह प्रगट है। सारे शब्द के अंदर बड़ा सिलसिलेवार आपने उपदेश किया है कि वह परमात्मा हमारे अंदर गुप्त क्यों बैठा है, और जो गुप्त है वह हमारे अंदर प्रगट किस तरह हो सकता है। जब सारी चीज हमें समझा दी, आप फरमाते हैं, गुप्त प्रगट तू सबनी थाई। सेवक कहता है कि हे सतगुरु, मुझे समझ आ गई है कि परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में व्यापक है, और क्यों है, और किस तरह प्रकट हो सकता है। आप फरमाते हैं, गुरु प्रसादी मिल सो जी पाई, कि ये जो समझ आई है कि परमात्मा गुप्त क्यों है, और गुप्त परमात्मा प्रकट किस तरह हो सकता है, किस तरह कण कण पत्ते पत्ते में उस परमात्मा के अपने अंदर दर्शन करने हैं, ये गुरुमुखों साधुओं संतों महात्माओं से पता चलता है।
नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया।
अब सब कुछ समझाकर गुरु साहब हमें यही नसीहत और उपदेश देते हैं, नानक नाम सलाहे सदा तू, कि हमेशा नाम की सराहना करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते नाम के गुण गाने चाहिए, नाम की महिमा करनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि जब भी वह नाम हमारे अंदर बसेगा, गुरुमुखों के जरिए बसेगा, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए बसेगा। ये जो कुछ भी दुनिया के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, ये ना कभी किसी के साथ गया है और ना ही किसी के साथ जा सकता है। देह के अंदर बैठकर जो चीज़ हम साथ में ले जा सकते हैं, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवण्या। भाई, उस नाम के बिना ना किसी चीज़ ने तेरे साथ जाना है, ना किसी चीज़ ने तेरी कभी सहायता करनी है। जब भी तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, केवल उस शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके बताए हुए उपदेश पर चलते हुए, चलते फिरते उठते बैठते शब्द के साथ, नाम के साथ ख्याल को जोड़कर रखें।
नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरे मुख मन वसावणिया।